अजीज दादी मैं एक भरूं क्या?
बेटा मैंने जो काम तुम्हें सौंपा है उसी को ठीक से अंजाम दो। अरे इसकी जड़ों और रेशों को अच्छे से निकालो बेटे।
अच्छी बात है, निकाल दिया, अब बिल्कुल साफ हो गया, ये लीजिए।
पता नहीं क्यों आज मेरा दिल सुबह से घबरा रहा है।
शायद कल रात के स्ट्रेस की वजह से।
डॉक्टर साहब तुम्हारे बकौल कल रात मुझे स्ट्रेस कहां। खाने बनाते हैं।
ये लीजिए, बिल्कुल साफ हो गया।
शाबाश, बिल्कुल ठीक है।
दादी इसके अंदर का तो नहीं पकाएंगी ना आप?
नहीं बेटे, इसकी वजह से कड़वापन आ जाएगा, इसे बाहर निकालना होगा वरना शिमला मिर्च में मसाला कहाँ समाएगा। कल रात से सुबह तक बिल्कुल ही नींद नहीं आई, उल्टे सीधे ख्वाब नजर आने लगते थे, फिर नींद को खैर बात कहकर मैं उठ गई।
आप बड़ी खुश नसीब हैं जो नींद को खैर बात कह देती हैं।
जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो 3-4 घंटों से ज्यादा नहीं सोती थी। किताब पढ़ा करती, नॉवल पढ़ा करती, पढ़ाया करती थी, अशआर याद किया करती। जब ये बुढ़ापा आता है तो सब बदल जाता है। कल रात मैंने बहुत कोशिश की कि हाफिज के कुछ अशआर पढ़ूं, सुकून मिल सके, लेकिन नहीं मिला।
ऊंग भी नहीं आई?
ऊंग और नींद में फर्क है बेटे। अरे इसमें छेद कर दिया तुमने।
अच्छा ठीक है, ठीक है दादी, अब ध्यान दूंगा। ये देखिए, इसे मैंने पहले काटा था।
ऊंग थकान की वजह से आती है और नींद बेख्याली की वजह से।
अजीज दादी अब आप इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई, आप ज्यादा ही सोच बैठी। आप अपने पोते को देखें, खूबसूरत, स्मार्ट, खुश।
खुद ही अपनी तारीफ इस कदर ना करो। चलो उठो मुर्तजा और बहार को फोन करके बुला लो। तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना?
नहीं मैं आज देर से जाऊंगा।
तो उठो जरा, एक फोन तो मिला दो।
जी ठीक है।
अरे सुनो बेटा, वो जरा टेलीविजन तो चला दो क्योंकि अभी खबरों का वक्त है। अरे जरा हटो ना, पीछे हटो थोड़ा।
अजीज दादी इस टीवी में है क्या चीज? मैं खुद आपके लिए कई चैनलों वाला टीवी लेकर आऊंगा ताकि आप ये सब बेकार प्रोग्राम ना देखें।
अगर चाहती तो मैं खुद खरीद लेती, मैं तो सिर्फ खबरें देखती हूँ, कभी कभार सीरियल भी, लेकिन अब तो सीरियल देखने की भी कोई ख्वाहिश नहीं होती।
सलाम मुर्तजा, कैसे हो? बाहर ठीक है?
अरे हटो पीछे।
नहीं अजीज दादी है, खबरें देखना चाहती हैं।
अरे जरा ठीक
है अजीज दादी, मैं अभी कहाँ जाऊँ? इधर पीछे ठीक है, बताइए ठीक है यहाँ पर? मुर्तजा फोन करो, देखो अजीज दादी ने शिमला मिर्च बनाई है, तुम्हें और बाहर को बुलाया है, चलो जल्दी से आ जाओ।
उनसे कहो कि नखरे ना करें, जल्दी से चले आए। जरा अलग हटो ना बेटा।
अजीज दादी कह रही है नखरे ना करो, जल्दी से आ जाओ।
आ रहे हैं ना?
ठीक है इंतजार करेंगे। आ रहे हैं, खुदा हाफिज। वो आ रहे हैं अजीज दादी।
देखो तुम्हारी नस्ल की खुशनसीबी या बदनसीबी इस चेक के एक टुकड़े पर मुनसर है। अमीर बन जाओगे, खास आम के नजदीक काबिल एहतराम बन जाओगे, मस्जिदों मदरसे बनवाओगे, यतीमों की मदद करोगे। इस आदमी की दौलत कार्य खैर में इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल कार्य खैर में कर सकते हो। नाजायज पैसों को कार्य खैर में नहीं लगाया जा सकता, खुद को फरेब ना दो।
आप ये बताए जनाब, आपके ख्याल में असली मोमिन कौन है?
देखो जो कुछ के मैंने इस्लाम, कुरानी तालीमात और अहले बैत अतहार और पैगंबर इस्लाम की तालीमात से सीखा है वो ये है कि अल ईमानो एतकादो बिलसान आलतिल आरा।
बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आप ठीक हैं? सलामत रहें, आप तशरीफ रखें। आप कैसे हैं हुजूर?
बस अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे?
खुदा का शुक्र है। हाँ जी कोई बात नहीं, आइए तशरीफ रखें
जी। आप भी बैठिए
जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, तशरीफ रखिए। अब बताइए कैसे
हैं? मैं आपसे माफी चाहता हूँ
जी, मैं तो
मौलाना साहब का इंटरव्यू है, बाद में आपसे मुलाकात कर पाएंगे वो।
آپ کے خیال میں کیا اسلام میں تشدد کو جائز قرار دیا گیا ہے؟
جہاں تک مجھے معلوم ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ جب زبان پر اسلام کا نام لاتے ہیں اس کا بہت ہی آسان مطلب پوشیدہ ہوتا ہے۔ زبان شناسی کے لحاظ سے بھی اسلام یعنی ارادہ خداوندی کے مقابلے میں سر تسلیم خم کرنا ہے۔ در حقیقت اسلام سلام سے ماخوذ ہے کہ اصلیت مسلم ہے، سلم سلام علیکم یعنی صلح و سلامتی میں رہیں۔ اس بنا پر جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اسلام کا تشدد سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کا جنگ سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ جنگ کے آغاز سے بھی گریزاں ہے۔ پائے جانے والے بہت سے ثبوت اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ہم صلح کے طرفدار ہیں۔ ہمارے پیغمبر صلح کے پیغمبر ہیں اور وہ ولایت کے پیغمبر ہیں، شادمانی کے پیغمبر ہیں، لیکن صرف اور صرف انہی مواقع پر کہ جہاں اسلام کے لیے رکاوٹ کھڑی ہو، یا جب مسلمانوں اور اسلامی مملکت پر جنگ مسلط کر دی جائے، تو بس وہیں انہی مقامات پر ہم دفاع کرتے ہیں۔ اور یہ تشدد کے زمین سے خاتمے اور زمین پر صلح و سکون کی بحالی کے لیے قطعاً جائز قرار پایا ہے، اور یہ تمام کتابوں کے حوالے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور جہاں تک میرا مطالعہ ہے، یہ ساری ہی باتیں حقیقت پر مبنی ہیں۔ اس کے متعلق تمام دنیا میں مختلف طرح کی ایک غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہیں، جس سے عوام میں غلط پیغام جاتا ہے اسلام کے بارے میں۔
اس گفتگو کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں۔
شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔
بہت بہت شکریہ،
امید ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ پر رحم فرمائے۔
ضرور، میں امید رکھتی ہوں۔
خدا حافظ ہو نگہبان۔
کیمرہ ان کے ساتھ لے چلو۔
واہ 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 واہ،
السلام علیکم۔
آپ کا خیر مقدم ہے۔
کیسے مزاج ہیں؟
الحمدللہ، خوش آمدید جناب۔
آپ کی صحت کیسی ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟
آپ آئے، اچھا لگا۔
سلامت رہیں آپ۔
بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کا شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ، بہت بہت استقبال ہے، خیر مقدم ہے آپ کا، تشریف رکھیے۔
کیسے آنا ہوا؟ دیتا رہتا ہوں،
بہت مدت ہو گئی آپ سے ملاقات نہیں۔ آپ؟
جی ہاں، آپ کا کہنا صحیح ہے، میں بہت کم آ پاتا ہوں۔ آپ کی خدمت میں زحمت دینے کا مقصد کچھ خاص نہیں ہے، اپنے ایک دوست کے پاس تھا کہ آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا، میں نے عرض کیا کہ جناب علی صاحب عمل ہیں۔
البتہ میں ایسا نہیں ہوں، یہ تو آپ کی ذرہ نوازی ہے، ہم تو عوام کی خدمت گزار ہیں۔
تو آپ کی انکساری ہے،
خدا مغفرت کرے۔ آپ کے والد، انشاءاللہ آپ اور آپ کے والد بھی، الولد علی سر ابی ہے، انشاءاللہ یہاں آیا کریں۔ البتہ میں کبھی کبھار آپ کے بھائی کے پاس میڈیکل سٹور میں ملنے جاتا ہوں۔ بہرحال آپ کا یہاں خیر مقدم ہے۔
مولانا صاحب، اگر اجازت ہو تو میں چلوں؟
آپ صاحب اختیار ہیں، خدا حافظ۔ میں آپ کی خدمت میں ہوں، اگر کوئی حکم یا کام ہو تو آپ فرمائیں۔
مولانا صاحب، آپ کی شکایت صحیح ہے، کچھ پریشانیوں کی وجہ سے یہاں آنا جانا کم ہی ہوتا ہے۔ خدا آپ کے بھی مرحومین کو جنت میں جگہ دے۔ مولانا صاحب، آپ کو تکلیف دینے کا مقصد یہ ہے کہ میرا وہ دوست آپ کے پاس آنا چاہتا تھا لیکن شرم آ رہی تھی۔ برسوں پہلے رشوت ستانی، ناجائز طریقے سے پیسوں کی وصولی اور دیگر غلط کاموں کی وجہ سے جیل کی سزا ہو جاتی ہے، اور جب تعاون کرتا ہے تو جیل سے رہا ہو جاتا ہے، اور جو لوگ رشوت ستانی میں شامل تھے وہ ملازمت سے نکال دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس واقعے کو 15 برس گزر رہے ہیں، لیکن میرا یہ دوست اس ادھیڑ بن میں ہے کہ اس درمیان جو کچھ اس نے کمایا اور حاصل کیا ہے وہ ناجائز مال میں شامل نہ ہوں گے، اور بے وجہ اس بات سے پریشان ہے کہ یہ ناجائز مال کہیں اس کے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس ناجائز مال کو کس طرح سے پاک و پاکیزہ کیا جائے۔ بس اسی لیے حاضر ہوا ہوں میں۔
حقیقت یہ ہے جناب ہوشمند صاحب کہ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اور اچھا مظہر ہے کہ آدمی توبہ کا رجحان حاصل کر لے۔ مشہور تو یہ ہے کہ انسان جائز الخطا ہے اور یہ ایک نعمت، اس لیے میں آپ کو اور آپ کے دوست کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آدمی جب آگاہ ہو جاتا ہے تب توبہ کا اقدام کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اتائب من الذنب کم اللہ زیبلہ، ایسا ہے جیسے کہ ابھی ابھی پیدا ہوا ہو، نیو بورن۔ کیونکہ ابھی ابھی میں انگریزی زبان میں انٹرویو دے رہا تھا، ابھی بھی اسی کے الفاظ زبان پر ہیں۔ یہ نعمت ہے، اس لیے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آدمی کے پاس راہ حل اور علاج ہے کہ جائز اور ناجائز مخلوط مال کا مسئلہ حل کر سکے، اس مال کو پاکیزہ بنایا جا سکتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر مال کے مالک کو پہچانتے ہیں تو اس مال کو ان کے حوالے کر دیں، اور اگر اس بارے میں آگاہی نہیں ہے اور ابھی مجہول ہے اور مجہول الحال ہے، اس وقت براہ راست طور پر آپ اپنے مرضی تقلید یا ان کے دفتر سے رجوع کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، یا آپ کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ اپنی طرف سے جو لوگوں کے آپ کے ذمہ حقوق کے مالک ہیں اسے غریبوں میں بانٹ دیں۔ اسلام میں سختی نہیں ہے، ہمیشہ آج کی اصطلاح میں ٹیک اٹ ایزی، کسی بھی چیز کو آسان سمجھیں، اور اسی کے ساتھ آپ اس کی قسط بندی بھی کر سکتے ہیں، اور یہ مسائل
نیز ان کی قسطوں میں بھی ادائیگی کی جا سکتی ہے،
پریشان نہ ہوں۔ اور اگر آپ کے دوست بھی پریشان ہیں تو انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، یعنی آپ میری طرف سے ان سے کہہ سکتے ہیں کہ فلاں آدمی نے، جبکہ آپ نے میرے لیے ذرا نوازی کی ہے، کہا ہے کہ راستہ کھلا ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہے، نو پرابلم۔
یہ تو آپ کا کرم ہے، معافی چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت۔
کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، صاحب اختیار ہیں۔
شکریہ اجازت، آپ کی زحمت کم کرتے ہوئے رخصت کی اجازت چاہتا ہوں۔
آنے کا شکریہ، آپ کے والد پر خدا کی رحمت ہو۔ خدا حافظ جناب۔
آپ سلامت رہیں۔
خدا حافظ، آپ بھی سلامت رہیں۔
بہت بہت شکریہ،
خدا آپ کا نگہبان ہو۔ آئیے میں آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں۔
نہیں جناب، میں نے آپ کو زحمت دیے،
خدا حافظ۔ حاطف صاحب، آپ آئے، بہت اچھا لگا مجھے، یقین مانیے۔
شکریہ،
خدا آپ پر رحم فرمائے۔ خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔
سلام سلام، کیا حال ہے؟ تم ٹھیک ہو نا؟ میری دوائیں میرے کو دے دو، میں چلوں۔ میری دوائیں میرے بھائی، ادھر آؤ، ڈاکٹر کو پتا ہے کہ کون سی دوا ہے، وہی اسٹیمنانین والی۔ ارے سنو ڈاکٹر صاحب، مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں، ڈاکٹر یونیورسٹی میں میرے پروفیسر تھے۔ ارے بھائی، تم خود ہی ڈاکٹر ہو، ڈاکٹر کو بلانے کی کیا ضرورت ہے؟
کیسے ہو؟
السلام علیکم۔
سلام، تم کیسے ہو، ٹھیک ہو؟
آپ ٹھیک ہیں؟
بتائیے کیا بات ہے؟
پہچانا ڈاکٹر صاحب؟
نہیں، میں نے نہیں پہچانا تمہیں۔
جناب یہ میں ہوں، آخری ہفتے کو تو میں آپ کا لاڈلا ہوا کرتا تھا۔
میرا لاڈلا؟
وہی جو آخری ہفتہ آپ کا ہم نشیں تھا، میری وہ دوائیں آپ دیا کرتے اور میں لے کر چلا جاتا تھا۔
افسوس، مجھے نہیں معلوم ہے۔
ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا خدمت گزار ہوں، آپ ابھی اتنے بوڑھے تو نہیں ہوگے کہ بھولنے کی بیماری مول لے لی۔ اس کو ڈین والی گولی کی بات کر رہا ہوں۔
اچھا، بھائی میں معافی چاہتا ہوں، ڈاکٹر کی تجویز کے بغیر تمہیں یہ دوا میں نہیں دے سکتا، معافی چاہتا ہوں۔
ڈاکٹر صاحب ذرا آپ سوچیں، میری جگہ آپ کا بیٹا ہوتا، اگر آپ کا بیٹا بیمار ہوتا اور اسے دوا کی ضرورت ہوتی اور وہ آتا اور آپ جیسا کوئی ڈاکٹر اسے دوا نہیں دیتا تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی؟ بولیں ڈاکٹر صاحب، خدا ان سبھی لوگوں پر اپنی رحمت نازل کرے جو قبر میں ہیں۔ ابھی میرے ابا جان بھی قبر میں یہ دیکھ کر لرز اٹھے ہوں گے۔ میں یہاں پر آ کر آپ سے التجا کر رہا ہوں، میرا ڈاکٹر نے اس کا گھر میں چھوٹ گیا، مجھے پتہ نہیں کہ ابھی میری ماں کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے اپنی دوا کی ضرورت ہے، میں یہ نسخہ گھر پر بھول آیا ہوں۔ آپ
ٹھیک ہے، تم ڈاکٹر کا نسخہ لے کر آؤ، میں اس کے مطابق تمہیں دوا ضرور دوں گا۔
میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج کی خوراک مجھے دے دو، مہربانی کر کے ایک ٹرا مائڈ میتا ڈون، اگر نہیں ہے تو اسٹیمنا فون کیڈوئن ہی دے دیں، اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو ڈینی نیکسٹ لوٹ تو ہوگی نا، وہی دے دیں، میں لے کر چلا جاؤں گا۔
دوست ذرا دھیرے، یہ شیشہ ہے، تمہارا ہاتھ زخمی ہو جائے گا، آرام سے۔ وہ سب کچھ موجود ہے لیکن اس کے بیچنے کے لیے ڈاکٹر کا نسخہ ہونا ضروری ہے، ڈاکٹر کا نسخہ، سمجھے؟ تم جاؤ اپنا نسخہ لے کر آؤ، میں تمہیں دوائی دے دوں گا، جاؤ ڈاکٹر کا نسخہ لے کر آؤ۔
ڈاکٹر صاحب آپ کا خدمتگار ہوں، آپ کو چوم
لوں گا۔ یہ کیا کر رہے ہیں
آپ؟ دیکھیں، آپ بالکل اطمینان رکھیں، میرے سینے میں راز دفن رہے گا، آپ کا یہ راز اس سینے میں دفن کر دوں گا۔
دیکھو بھلے آدمی، سنو، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں کہ ڈر کی وجہ سے نہیں بیچتا، ہم اپنے کام سے متعلق قاعدے قانون کی بنیاد پر ڈاکٹر کے حکم اور رائے کے بغیر دوا نہیں دے سکتے۔ تم اپنا ڈاکٹری نسخہ لے کر آؤ، میں تمہیں خوشی خوشی وہ دوا دے دوں گا، سن لیا؟
डॉक्टर साहब आपसे दरख्वास्त करता हूँ, एक काम करते हैं, हम अपनी जगह बदल लेते हैं, आप खुद को मेरी जगह पर करार दें और फिर देखें कि आपकी क्या हालत होती
है। माफी चाहता हूँ, मुझे देने की इजाज़त नहीं है।
कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, नशा कैंसर नहीं है बल्कि ये एक बीमारी है, हम सभी बीमार हैं, मुझे एक बीमार की निगाह से देखें।
हम उस बीमार को दवा देते हैं जिसके पास नुस्खा लिखा होता है, ठीक है?
ठीक है, तो फिर नुस्खा लेकर आऊंगा
इंशाल्लाह।
भाई तुम गवाह रहना, मैं नुस्खा लेकर वापस आऊंगा, आपके पास कुछ पैसे हैं जो मुझे कर्ज दे दें ताकि घर जाकर जल्दी से नुस्खा लेकर आ जाऊं।
मैं अपने पैसों का पर्स भूल आया हूं, सच में।
अच्छा ये बात है, तो बोलो तुम्हें कितने पैसे दूं?
नहीं मुझे जरूरत नहीं है। अरे कहा ना मेरा पर्स खाली है।
नहीं मुझे जरूरत नहीं है,
कम से कम ये क्रीम तो ले जा सकता
हूं। अरे ये क्यों उठा रहे हो?
उस्ताद।
हाँ बोलो।
ये सोना मुझे जैकेट में मिला है।
भाई मोहसिन।
जी उस्ताद।
यहाँ आओ मोहसिन।
जी कहिए उस्ताद।
मोहसिन मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी कस्टमर का है, इसे तिजोरी में रख दो।
रसीद नंबर क्या है?
आओ मैं बताता हूँ, वहां पर लिखा हुआ है।
अलमारी की चाबी दीजिए।
सिगरेट नहीं पी रहे हो, चिमनी की धुएं की तरह हवा में उड़ा रहे हो। क्या फायदा? मेरा दिल करता है एक दिन तुम्हें सबसे बड़ा आदमी बनते देखूं, इसी तरह ऊपर उठते रहो, इसी तरह इस लिफ्ट की तरह, ताकि सब तुम्हारे पांव तले हों।
मैं अगर ऊपर उठूंगा भी तो तुम्हारे साथ रहूंगा अभी की तरह।
नहीं, कुछ लोग जब ऊपर उठते हैं ना तो वो भूल जाते हैं कि उन्हें ऊपर कौन लाया था। ऐसे लोग अपनी निचली सीढ़ी को तो देखते ही नहीं, उनकी निगाहें सिर्फ ऊपर वाली सीढ़ी की तरफ रहती है। अलबत्ता मेरे लिए जरूरी यह है कि तुम ऊपर तक जाओ, फिर चाहे तुम मुझे उस नीचे वाली सीढ़ी की तरह ही क्यों ना देखो।
सब लोग ऐसे नहीं होते, पर हमारे अंदर मुरव्वत नाम की एक चीज पाई जाती है, एहसान, वफा, मोहब्बत, कद्र कीमत, आंख में शर्मो हया वगैरह, और इसके अलावा
मोहब्बत।
मुझे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि ऐसी जगह देखूं। अजीब किस्म की बनावट है, उसकी बनावट की तफसील भी दर्ज है।
बताओ।
देखो यहाँ चार हिस्से हैं, छत, ओ नहीं सुतून, छत, असली इमारत और टावर। यहाँ पर दुनिया की सबसे वजनी साख पाई जाती है, 1.5 लाख टन की बात मैं समझता हूँ कि क्या होता है। सब मुल्की लोगों ने बनाया है, क्या बात है, वाकई में खुशी की बात है। बायकॉट के होते हुए वो भी 8 रिएक्टर जलजले का झटका बर्दाश्त करना, मैं हैरान हूँ। मैं हैरान हूँ ये देखकर कि दुनिया का सबसे बड़ा घूमने वाला रेस्टोरेंट यहाँ पर है। क्या नजारा है, लेकिन कितना सन्नाटा है यहाँ पर।
तुम्हारे लिए रिजर्व कर लिया है।
यहाँ से तेहरान कितना खूबसूरत दिखता है।
ये सारी खूबसूरती हमसे है, सभी आशिकों के लिए, सभी बावफा साहिबे मारफत व बसीरत लोगों और उन सब लोगों से है जो कि कदरों मंजिलत को समझते हैं, जो एहसानो मुरव्वत के कायल हैं।
तू चाल कहाँ है? वो रहा। अच्छा तो अजीज दादी का घर
वहां पर हमारा घर है।
तो फिर अजीज दादी का घर कहाँ है?
ढूंढो तो जानू।
हाँ वहां अजीज दादी का घर है। देखो देखो वहां अपना समावर तैयार कर रही हैं। वहां पर अमीर अली का स्कूल है और वो अंकल का मेडिकल स्टोर है।
तुम्हारी आंखें तो बड़ी तेज हैं।
मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाहता कि नीचे जाने का मंजर देखूं।
तो ना देखो। लेकिन बहुत दिलकश है।
हम पहुंच गए?
नहीं पहुंचे।
पहुंच गए?
नहीं। नहीं पहुंचे।
3 पहुंच गए। पहुंच गए तो अब पहुंच गए।
हाँ पहुंच ही गए।
मैं कह रही थी कि कल रात हादी भाई के यहाँ हम लोगों की दावत है, बच्चों के खैर मकदम की रस्म इजरा के बाद। अपने बच्चों के बारे में कुछ सोचे, उनके लिए हदिया वगैरह खरीद लें, ये तो रस्म है ना, या के पैसे दे दें।
यूनुस को बुलाओ, मुझे बात करनी है उससे।
मुझे भी देखो कि किससे बात कर रही हूँ। यूनुस, यूनुस आ जाओ बेटे, चाय पी लो, तुम्हारे पापा तुम्हें बुला रहे हैं। यूनुस, यूनुस बेटा।
मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ।
ये लो अपनी चाय, अपने कमरे में जाकर पियो।
मैं आ रहा हूँ तो अच्छा होगा। नहीं, मेरा कुछ होमवर्क रह गया है, मुझे उसे पूरा करना होगा।
यहाँ सामने बैठो। तुम तो जानते ही होगे कि क्या बात करना है।
लगता तो कुछ ऐसा ही है।
मैंने पहले भी कहा था कि यह आदमी खतरनाक है, लेकिन तुमने सुना नहीं। मैंने तुमसे कहा था कि इस आदमी के आसपास मत भटकना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कहा था कि उस आदमी के साथ काम करने में भलाई नहीं है, लेकिन नहीं सुना, झूठ पर झूठ बोलते गए। चलो उनमें से किसी में बुराई नहीं है, लेकिन अभी मैं तुम्हें बता रहा हूं, खुद को अलग कर लो। जिस रास्ते पर तुम चल पड़े हो वो गलत और मुनहरिफ है।
लेकिन मैं इस गलत रास्ते को उससे बेहतर समझता हूं जो आप पेश करना चाहते हैं।
देखो बेटे, तुम्हारी पोजीशन बड़ी अच्छी है, जिस तरह के चाहे काम कर सकते हो। जितनी जल्दी हो सके अपने आप को संभालो और अपने लिए एक बेहतर जिंदगी फराहम कर लो। जब तुम मास्टर की डिग्री ले लोगे, अगर कुछ भी नहीं करोगे तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो जाओगे, उसके बाद तुम पीएचडी भी कर सकते हो।
मैं अपनी जिंदगी खुद जीना चाहता हूं, मुझे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और टीचर की तनख्वाह पर गुजारा करना पसंद नहीं है।
पसंद नहीं है तो नहीं है, ढंग से बात करो, बेशर्म कहेंगे।
ठीक है, अपनी कंपनी कायम करो, काम करो, लेकिन पढ़ाई मत रोको।
तो आपने छानबीन भी कर ली है? पता चल गया कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी है?
छानबीन की जरूरत नहीं है, मैंने फोन किया था तुम्हारे दोस्त को।
और कोई हुक्म तो नहीं?
अभी अपनी जगह पर बैठो, तुम्हारे पापा तुमसे बात कर रहे हैं, वरना थप्पड़ मार दूंगी।
मैडम खामोश रहिए मेहरबानी करके। मैं खुद ही कल जाकर उसकी गाड़ी वापस कर दूंगा। खुदा ने चाहा कि हमारी गाड़ी मिल जाए। ये लो बेटा, अगर नहीं भी मिलती है तो भी गाड़ी उसे लौटा देना। बेटे बैठकर मेरी बातों पर अच्छी तरह से गौर करो। ये आदमी लोगों के साथ एक रुमाल की तरह पेश आता है कि जब मैला और गंदा हो जाता है तो कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है।
आपके साथ तो आखिर तक था, आपने रिपोर्ट कर दी कि निकाल दिया गया?
तुम चुप भी रहोगे या नहीं?
मैडम मैंने कहा ना कि मेहरबानी करके चुप रहो। तुम्हें सब कुछ बता दिया है लेकिन सब कुछ नहीं कहा होगा। बेहतर होगा अपनी अम्मी से पूछ लो, मेरे बात वही ऐसी हैं जो सब कुछ अच्छी तरह से जानती हैं। पूछो अपनी अम्मी से कि ऐसा क्या हुआ कि उसने मुझे कालकोठरी में डलवा दिया था।
दूसरों को फंसाने का अंजाम तो यही होगा ना?
तुम अपनी हाथ
हाँ, मैंने ही फंसाया है। मैंने अपने घर वालों और लोगों को बेच दिया। अगर मैंने उस वक्त इसका राज फाश कर दिया होता तो आज मेरे बेटे और दूसरों के बेटों को तबाह ना कर पाता। किसने कहा कि एक स्मगलर को पकड़वाना, एक घूसखोर, एक चोर और एक कातिल को पकड़वाना बेईमानी है? बोलो, अगर मैं उस वक्त खामोश नहीं रहता और सब कुछ बता दिया होता तो आज वो मेरी जिंदगी को इस तरह अजीरा ना बना पाता।
आप जानना चाहते हैं कि मैं क्या समझाऊं? मैं ये सब ना खाओ वो नहीं करता और कहता है कि ना करो उससे कुछ नहीं होता। इसमें कोई सलाहियत नहीं होती है, लंगड़ा लंगड़ा कर या खौफ ज्यादा होकर आगे बढ़ता है और जमीन पर गिर पड़ता है। उसके बाद उसका गुना इसकी उसकी गर्दन पर डालता है और जब इन चीजों से बात नहीं बनती तो दूसरे को फंसा देता है। जहां तक मैं समझ पाया हूं आपके पास कहने को कुछ है ही नहीं।
तुम बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हो लड़के, मैं भी तुम्हारी तरह था। एक दिन मेरे अब्बा ने मेरा हाथ पकड़ा, एक कोने में ले जाकर बोले तुम वक्त से पहले ही बड़े हो गए हो। जंग का जमाना था, घर खरीदना सस्ता था लेकिन खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं था। फिर भी ये घर खरीदा, ये घर जो तुम देख रहे हो, घर के तमाम सामान को जो कि तुम लोगों की नजरों से गिर चुका है मैंने खरीदा। उस वक्त अगर किसी के पास पैसा होता तो वो अमीर आदमी कहलाता था। मेरे अब्बा ने एक कोने में ले जाकर मुझसे कहा कि जानते हो कि आशूरा के दिन, जानते हो नमाजी लोगों पर इमाम हुसैन की नसीहत क्यों असर नहीं कर रही थी? मैंने कहा नहीं अब्बा जान, मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा इमाम ने आशूरा के दिन लोगों से चिल्ला कर कहा तुम्हारा पेट नाजायज खाने से भरा हुआ है, तुम्हारा बदन हराम खाने से मोटा हो गया है, इसीलिए हक बात तुम्हारे कानों तक नहीं जा रही है। उस वक्त मेरी समझ में नहीं आया कि अब्बा जान क्या कह रहे थे लेकिन अभी समझ में आ रहा है। लेकिन अभी समझ में आ रहा है, अभी जो तुम मेरे सामने बैठे हो और मेरी बातों को नहीं समझ रहे हो, मेरी समझ में आ रहा है कि वो नाजायज खाना मेरी जिंदगी में क्या तूफान लाया। काश मैंने उसी वक्त उसको पकड़वा दिया होता तो उस वक्त के मुल्की हालात के तहत उसे दीवार के सहारे खड़ा करके गोली मार दी गई।
लिहाजा कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है।
बेटे मुझे जो कहना था कह चुका, मैंने हुज्जत तमाम कर दी, अब मेरा कोई फर्ज नहीं है, अब मैं अपने रास्ते चलूंगा। अब तुम खुद समझो, ना तो तुम्हें मार सकता हूं, यानी तुम्हें मार ही नहीं सकता हूं, शायद तुम ही मुझे मार दो, ना तुम्हारा कत्ल कर सकता हूं क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात अच्छी तरह जानता हूं और वो ये कि तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे कत्ल कर डाला, तुमने मुझे जिंदा काट दिया।
ना तो मैं किसी का कत्ल करूंगा ना किसी को मारूंगा, लेकिन ऐसा कुछ करूंगा के फरीदून और फरीदून जैसे लोग मेरे जूतों पर सर रखकर अपनी नाक रगड़ेंगे और कहेंगे कि यूनुस हमें माफ कर दो।
काश कि उसी वक्त मैंने अपना मुंह खोल दिया होता और अपनी बहन का ख्याल ना किया होता और फरीदून को पकड़वा दिया होता। काश काश कैसा किया होता, ये रोजगार और समाना भी कैसे बेआवाज मारता है। ये दुनिया पहाड़ है, इस पहाड़ पर जाने वाली आवाज सदाए बास गश्त बनकर पलट आया करती है।
دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس هامه همزاد نفس